तो कल पूतना मोक्ष की कथा हम सुन रहे थे और अंत में हमने सुखदेव महाराज का आशीर्वाद ग्रहण किया, क्योंकि सुखदेव महाराज कहते हैं कि जो ऐसे बाल लीलाओं का श्रवण श्रद्धा से भक्ति भावना से करते हैं तो बहुत ही जल्दी उनके हृदय में गोविंद या श्री कृष्ण के प्रति रति या आकर्षण जागृत हो जाएगा, जो कि हमारे जीवन की परिपूर्णता है। तो भगवान ने कृष्ण कथा के श्रवण कीर्तन का मार्ग हमारे लिए दिया है, विशेषतः कलयुग के लिए। भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन तो हर युग में उचित है, परंतु कलयुग में इसका विशेष महत्व है, लाभ है, क्योंकि केवल श्रवण कीर्तन के माध्यम से हम इस संसार को पार करके भगवान के निजीय संग का प्राप्ति उनके धाम में कर सकते हैं। इतने आसान तरीके से इतने ऊंचे पद की प्राप्ति हो सकती है। तो जो व्यक्ति इस श्रवण कीर्तन के मार्ग का आश्रय नहीं लेता है वो वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। तो इसलिए पूतना के वध की कथा सुनने के बाद में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि वास्तव में ये कथा कर्ण रम्याणी, कितने रम्य है हमारे कर्णों के लिए, मनः ज्ञानी कि मन के लिए कितना आकर्षक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे कथाएं आप सुनाते रहें। वैसे देखा जाए तो लोगों को भगवान की कथाएं सुनने की इतनी रुचि नहीं है, लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वो इतने रम्य हैं कि तुरंत हमें हमारे कर्णों को और मन को अच्छा लगने लगता है और हमारे हृदय में जो भी कलमश है जो कि अनादि काल से हमारे भौतिक ब्रह्मांड का संग करने से उत्पन्न हुए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हमारे हृदय में इस समय संसारी कथाएं करने की तीव्र इच्छा है, तीव्र आकर्षण संसार के कथाओं के प्रति है और ये हमारे संसार के बंधन का मूल कारण है। हमारे हृदय में संसार की कथाओं के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान हमने दे रखा है, कृष्ण कथा के लिए स्थान नहीं रखा है, इसलिए ये भव बंधन में हम अटके पड़े हैं। लेकिन जब हम कृष्ण कथा के लिए स्थान देंगे तो हम ये भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं, ये परीक्षित महाराज सुखदेव महाराज को बता रहे हैं। और इसलिए सुखदेव महाराज कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप ऐसे कथाएं मुझे सुनाते रहें। और परीक्षित महाराज का भी आशीर्वाद है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन करता है उसे बहुत ही जल्दी हरव भक्ति ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत जल्दी प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है। और वो कहते हैं कि तत्पुरुषे तत्सख्यम, कि आपके जो संग में रहने वाले हैं अर्थात वैष्णव भक्त, उनके प्रति प्रेम आसक्ति हो जाएगी। कितना बड़ा वरदान है देखिए। परीक्षित महाराज कहते हैं कि कृष्ण कथा का श्रवण करने मात्र से ही वैष्णवों के संग के लिए हम आतुर हो जाएंगे, वैष्णवों के प्रति मैत्री मित्रता की भावना बढ़ जाएगी, वैष्णवों के प्रति प्रेम की भावना बढ़ जाएगी, आस्था बढ़ जाएगी। देखिए कितना बड़ा वरदान है ये। अभी जब हम वैष्णवों का संग करते हैं तो हमें वैष्णवों की कमियां नजर आती हैं, वैष्णव में दोष दिखाई पड़ते हैं। हम ये नहीं देखते कि एक वैष्णव कितना दुर्लभ है ये संसार में, कितने हजारों करोड़ों लोगों में से एक वैष्णव आता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततां अपि सिद्धानां कश्चित् माम वेत्ति तत्त्वतः। हजारों हजारों लोगों में से कहीं एक व्यक्ति विरला ही ऐसा मिल जाता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करने का इच्छुक रहता है, और ऐसे हजारों लोगों में से एक व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और ऐसे हजारों मुक्त पुरुषों में से कहीं विरला ही एक भक्त मिल जाता है। तो कितना दुर्लभ है वैष्णव। लेकिन जब हम वैष्णव के संग में आते हैं तो ये नहीं सोचते हैं, हम ये भी नहीं सोचते हैं कि वैष्णव कृष्ण के लिए कितना प्रिय है। हम वैष्णव में दोष ढूंढने लगते हैं। तो परीक्षित महाराज आशीर्वाद देते हैं कि वैष्णवों के संग में जो आके केवल खुले हृदय से, प्रेम से, भक्ति भावना से इन बाल लीलाओं का श्रवण करेगा, उसके हृदय में वैष्णवों के प्रति जो द्वेष भावना है वो नष्ट हो जाएगी, और क्या होगा, हृदय में आस्था बढ़ जाएगी, वैष्णवों के प्रति प्रेम भावना, मैत्री की भावना बढ़ जाएगी। ये बहुत बड़ा वरदान है, इसको हमें समझना चाहिए। जब भगवान अपने भक्तों के संग के लिए इतने आतुर होते हैं तो फिर हमें कितना और आतुर होना चाहिए। भगवान ने अपने आप को विस्तार केवल इसलिए किया है ताकि वो अपने भक्तों के साथ में आदान प्रदान करे प्रेम का। अगर भगवान की इच्छा न होती तो अपने आप को विस्तार न करते और हम आज यहां न होते, और भक्ति के आनंद की प्राप्ति हम नहीं कर पाते। तो इसलिए परीक्षित महाराज का वरदान है ये। तो ये बाल लीलाएं हैं या कृष्ण लीला भी है, हमेशा इनका श्रवण कीर्तन करना चाहिए, हमें सब श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए रोज। हम में से कितने हैं जिन्होंने कृष्ण किताब अभी तक पढ़ी है, हाथ ऊपर कीजिए। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अच्छी तरह से पढ़ी है, बार बार पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार पढ़े और हम सोचे कि हमने पढ़ लिया है, रोज पढ़ना चाहिए, नित्य नियम से पढ़ना चाहिए, तब रुचि जागृत होगी, तब श्रीमद् भागवत क्लास में नींद नहीं आएगी। बार बार पढ़ने से यह वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा भगवान का कि हम उब नहीं जाएंगे कृष्ण कथा सुनते समय, रुचि जागृत रहेगी। तो इस तरह से परीक्षित महाराज भागवत में बार बार ये बताते हैं, सुखदेव महाराज भी बार बार बताते हैं, हर पन्ने पे प्राय यही बात सुनाई पड़ती है, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं करते हैं। एक किताब उठाकर 5 पन्ने 10 पन्ने रोज पढ़ना कौन सी मुश्किल की बात है, हर प्रवचन में हम सुनते हैं, फिर क्यों नहीं करते। अपने आप को यही प्रश्न हमें करना चाहिए, आज जाकर अपने आप को सब ये सवाल कीजिएगा। क्या सवाल करेंगे, क्या सवाल करेंगे, क्यों हम कम से कम 5 पन्ने भी कृष्ण कथा का नहीं पढ़ते हैं रोज, क्यों नहीं समय निकालते। समय निकालना चाहिए। श्रृण्वतः स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्थ हुई अभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम। सूत गोस्वामी भी आशीर्वाद देते हैं। देखिए इतने बड़े बड़े संत भक्त हुए हैं, सब आशीर्वाद दे रहे हैं कि केवल इतना करो फिर देखो क्या तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन हम नहीं करते। तो सूत गोस्वामी जी क्या बता रहे हैं, कहते हैं श्रृण्वता स्वकथा कृष्ण, जो व्यक्ति कृष्ण की स्वकथाएं सुनता है ध्यान से, जो अपने आप में पुण्यवान है, पुण्य श्रवण कीर्तन, केवल कीर्तन श्रवण करने मात्र से ही पुण्य प्राप्त होती है। हृदयंतस्थो ही अभद्राणी, अभद्र चीजें जो हमारे हृदय में हैं वो नष्ट हो जाती हैं, विधुनोति पूरी तरह से धुल जाती हैं, सुहृत सताम सताम मतलब जो सतमार्ग में चल रहे हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं। सुहृत मतलब उनके शुभ चिंतक, उनके मित्र। सताम या भक्तों के शुभ चिंतक हितैषी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो जब हम इनके कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तो हृदय के अभद्र चीजें नष्ट हो जाती हैं और कृष्ण के प्रति आकर्षण या प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो जब हम ये लीलाएं सुनते हैं, केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कर्तव्य कर रहे हैं, हमें बताया गया है कि हमें करना है इसलिए हम कर रहे हैं। अगर नहीं आएंगे तो हम पूछा जाए कि आप नहीं आए, नहीं। हमें इसलिए सुनना चाहिए कि हमें समझना चाहिए कि इससे सुनने क्या लाभ होगा, हमें इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। अगर हम ये नहीं करेंगे तो कितनी हमारी हानि होगी, और इसमें कितना आनंद है, कितना रस है, आगे चल के और कितना रस पान कर पाएंगे, ये सोचकर हमें आना चाहिए। तो इस तरह से परीक्षित महाराज ने जब आगे प्रोत्साहन दिया सुखदेव गोस्वामी को, तो सुखदेव गोस्वामी को भी थोड़ा उत्साह हुआ कुछ कहने के लिए कृष्ण कथा। जब वक्ता देखते हैं कि सुनने वाले श्रोतागण वो भी थोड़े उत्सुक हैं, उत्साही हैं सुनने के लिए, तो उनका भी उत्साह बढ़ जाता है। लेकिन जब वक्ता देखते हैं कि कर रहे हैं, तो सोचते हैं अरे क्या है, हमें भी मजा नहीं है कृष्ण कथा बोलने में। वक्ता इधर देख रहे हैं, कुछ खुली कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो फिर वक्ता के हृदय में सोचते हैं ठीक है चलो जल्दी जल्दी समाप्त कर लेते हैं। लेकिन जब वक्ता देखते हैं कि श्रोतागण भी उत्साही है, तो और भी रसमय बन जाता है कृष्ण कथा का जो संग होता है, वो रसमय बन जाता है। इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी ने कैसे सुंदर सुंदर रूप से विस्तार किया, कल हम चर्चा कर रहे थे ना, शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबंती भागवतम रसमालयम अहोर मुहो रसिका भुवि भावका। तो जैसे जैसे भक्तों, ऐसे सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्तों के मुखारविंद से हम सुनते रहते हैं, हम देखते हैं कि परंपरा में कितना रसमय बनता गया। और श्रील प्रभुपाद की टीकाओं ने कितना रसमय बना दिया है इस श्रीमद भागवत को। और श्रीमद भागवत की जो 10वें स्कंद का जो सारांश है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, यह ग्रंथ जो कि प्रभुपाद जी ने लिखा है, उसमें प्रभुपाद के हृदय से जो रस है वो उन्होंने इन पन्नों में प्रदर्शित किया हुआ है। बहुत सरल किताब है, तो हमें पढ़ना चाहिए। तो परीक्षित महाराज की इस भावना को देखकर फिर सुखदेव गोस्वामी आगे बोलने लगे। पूतना की कथा तो खत्म हो चुकी, फिर आगे सुखदेव गोस्वामी बोलने लगे कि इस तरह से कृष्ण भगवान का लालन पालन करने लगी माता यशोदा। और जब कृष्ण भगवान 3 महीने के हुए, तो जैसे साधारण बालक करते हैं, वो तब तक पीठ पर लेटे हुए थे। पीठ के से लेटने के अलावा और कोई उनको स्थान या पोजीशन पोज नहीं मालूम था। लेकिन आपको मालूम है, आप में से के घर में जो छोटे बच्चे हुए हैं, कि 3-4 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो पीठ से हटने का प्रयास करता है, अपने साइड में हटने का, इस कंधे पे उस कंधे पे, और कभी कभी अपने पेट पे भी उल्टा हो जाता है। तो ऐसे समय एक क्रिया होती है, एक उत्सव मनाया जाता है वैदिक संस्कृति में, जिसको उत्थान क्रिया कहते हैं। वैदिक सभ्यता में ऐसे बहुत क्रियाएं होती हैं, ऐसे उत्सव बहुत हुआ करते हैं। और खास करके जब बच्चे का जन्म होता है तो वो बोझ नहीं माना जाता है, आधुनिक काल में एक बोझ माना जाता है। पति पत्नी दोनों काम करने जाते हैं, फिर कौन संभालेगा बच्चे को, खर्चे भी बढ़ गए हैं, कैसे बच्चे को खिलाएंगे पिलाएंगे, कौन इसका देखभाल करेगा, तो इस प्रकार से एक बोझ माना जाता है। इसलिए एक गर्भपात वगैरह आजकल इतना चल रहा है। तो वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं है, हर क्षण में हर दिन कोई ना कोई उत्सव, कोई ना कोई त्योहार, कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्रियाएं चलती रहती थी। गर्भाधान संस्कार से लेकर आगे तक जन्म के बाद में भी क्रियाएं चलती रहती थी। नामकरण के बाद में और जन्म के पहले भी जब बच्चे तीसरा महीने का सातवें महीने का होता है माँ के गर्भ में, तो माता जाके पड़ोस के बच्चों के साथ में भोजन करती है, तीसरे महीने के अंत में सातवें महीने के अंत में, जिसको स्वाद भक्षण कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो उसी प्रकार से जब बच्चा तीन महीने का हो जाता है तो ये उत्थान क्रिया की जाती है, इस बात की खुशी मनाने के लिए कि बच्चे ने भी पीठ छोड़कर अभी वो कंधों पे ऐसे उस पलट रहा, पलटी मार रहा है और पेट पे भी अभी बैठ सकता है, चल सकता है, अभी धीरे धीरे से उठने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे समय माता यशोदा ने सोचा कि अभी उत्सव करना चाहिए। सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण किया, ब्राह्मण जो है अच्छी तरह से वेद पाठ वगैरह करने लगे, और इस प्रकार से क्रिया करने के बाद में माता यशोदा सोचने लगी कि अभी कुछ उत्सव मनाया जाए। जब सारे लोग वहां आए हुए थे, ब्रजवासीगण आए थे, ब्राह्मण आए थे, रिश्तेदार आए थे, तो कृष्ण भगवान को गोद में लिए माता यशोदा बैठी थी। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान को थोड़ी नींद आ रही है, ऐसे लगा उनको, उनके चेहरे को, उनके मुखारविंद को देखकर, तो उन्होंने सोचा कि इनको अभी सुलाना चाहिए। तो उन्होंने उनको नीचे जमीन पर रख दिया और अपने काम के लिए चली गई। इधर उधर जो मेहमान आए थे उनको, उनका स्वागत करना, किसी का स्वागत कर रहे थे कहीं और जाके, किनको दान दे रहे थे, जो ऐसे क्षत्रिय और वैश्य हुआ करते थे पहले, वो ऐसे हर एक अवसर पर उत्सव पे दान दिया करते थे, और सुंदर सुंदर गाय जिनके ऊपर सोने के गहने थे, जिनके ऊपर अच्छे अच्छे कपड़े थे, फूल के माला थे, तो ऐसे गायों का दान करते और साथ साथ अनाज का दान ब्राह्मणों को करते, तो ये एक प्रथा हुआ करती थी। तो इस तरह से माता यशोदा अपने उत्सव के कार्यों में व्यस्त रही। उधर कृष्ण भगवान सोच रहे हैं कि अरे मुझे अकेले छोड़कर माता ये तो चली गई, मुझे दूध चाहिए, और माता यशोदा वहां मेहमानों के लिए का देखभाल करने चली गई है, मैं ज्यादा महत्वपूर्ण हूं या मेहमान ज्यादा महत्वपूर्ण है? जब भी बालक को अपने माँ का ध्यान चाहिए होता है, बालक देखता है कि माँ का ध्यान मेरे से हट गया है, तो बड़ा गुस्सा आ जाता है बच्चे को। फिर क्या कर सकता है बच्चा, रोता है, जोर जोर से चीख चीख के रोता है, और तो कुछ कर नहीं सकता, तो जोर जोर से रोता है। तो जैसे रोता है तो माँ को भाग के आना पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं उसी प्रकार से हमें भी भगवान के लिए भगवान का नाम पुकारना चाहिए। अभी हम सोचेंगे इतने सारे लोग हैं, सभी लोग नाम जप कर रहे हैं, भगवान का ध्यान वहां चला जाएगा तो फिर हमारे ऊपर ध्यान नहीं रहेगा। इतने लोगों को भगवान को देखना, ये भी नाम जप कर रहा है, वो भी देख रहा है, वो उनको भी देखना है, भगवान के लिए कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन फिर भी भावना है कि जितने निस्सहाय भाव से हम भगवान को पुकारेंगे उतने जल्दी भगवान आएंगे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी साधारण बालक की तरह चिल्लाने लगे, रोने लगे। अभी जैसे रोने लगे, क्रोध आए, देखा कि माता यशोदा सुन नहीं रही हैं, कहीं दूर माता यशोदा, कहीं इधर मेहमान के साथ, तो कहीं उधर दान दे रही हैं, कहीं उधर कुछ रसोई में कुछ कर रही हैं, तो और गुस्सा आया। तो गुस्से में भगवान ने क्या किया, पैर को फैलाया और लात मार दिया। अभी भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने एक हाथ गाड़ी के नीचे रख दिया था, सुरक्षित उनका अच्छा एक तकिया बनाकर उसके ऊपर रख दिया था, और कृष्ण भगवान आराम से वहां सोए हुए थे, और जो हाथ गाड़ी वो काफी ऊंचा था तो कोई खतरा नहीं था। तो जब कृष्ण देखा कि माता यशोदा नहीं आ रही है तो लात मारा, लात मारा तो पूरा लात वैसे पहुंच नहीं पाया चक्र तक, केवल स्पर्श हो पाया। लेकिन जब स्पर्श हुआ चक्र के साथ में, तो बिल्कुल वहां अद्भुत दृश्य दिखने में आया। जो चक्का है वो एक्सल से बिल्कुल अलग हो गया, टूट गया, और चक्के के सारे जो अंग है वो सब चूर चूर हो गए, और सारा जो सारी हाथ गाड़ी है वो पलट के गिर पड़ी, और इसके अंदर बड़े बड़े बर्तन वगैरह सब भारी भारी वस्तुएं पड़ी हुई थी, लोहे की और अलग अलग धातुओं की पड़ी हुई थी, सब गिर पड़े। और ऐसा आवाज आया, आप जानते हैं कि एक बर्तन घर में गिर जाता है तो कितना आवाज आता है, यहां पे इतने सारे बर्तन थे, भारी भारी बर्तन अलग अलग धातुओं के, तो कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श से वो चक्र तो टूट गया, हाथ गाड़ी का जो हैंडल था वो भी टूट गया, और सारा जो हर जो गाड़ी है वो पलट गई, और पलट गई तो सारे भारी भारी बर्तन इधर उधर हो गए। आप समझ सकते हैं कि कितना हंगामा हुआ होगा। और वहां इस आवाज को देखकर सारे ब्रजवासी दौड़ते हुए आ गए वहां पर, और वहां पर क्या देख रहे हैं दृश्य की, सारे बर्तन इधर उधर, हाथ गाड़ी बिल्कुल टूट चुकी है, और कृष्ण भगवान के एक बाल भी बक नहीं गया है, आराम से लेटे हुए हैं कृष्ण भगवान। अभी देखिए ऐसे कोई दुर्घटना हो जाती है तो यह संभव है कि पूरा गाड़ी है वो जो कृष्ण भगवान के ऊपर गिर जाती, लेकिन कृष्ण भगवान के ऊपर नहीं गिरी, बिल्कुल ऐसे परफेक्ट गिरी हुई थी गाड़ी की, भगवान को छू नहीं रही थी। और सभी लोग सोच लगे, वाहवाकार करने लगे, क्या बात है, क्या हुआ। और उस समय वहां थोड़े बालक थे, बच्चे खेल रहे थे, जिनको माता यशोदा ने कहा था कि अभी तुम देखभाल करो इसका, मैं अभी आ रही हूं तुम देखो। तो बच्चे अपने दुनिया में मस्त थे, अपने खेल खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमने देखा कि कृष्ण ने लात मारी है चक्के को और चक्का टूट गया और ये गिर गया। तो सारे जो ब्रजवासी थे, माता यशोदा और नंद बाबा अन्य गोप गोपियां सोच लगी, ये कैसे हो सकता है, ये है 3 साल का बालक, शिशु है, और इसके जो चरण है वो तो बिल्कुल कोमल पत्ते के समान है। तो कोमल पत्ते के समान जो पैर हैं, चरण हैं, वो भले ऐसे शक्तिशाली गाड़ी को कैसे गिरा सकते हैं, तोड़ सकते हैं। देखिए तो चक्के की अवस्था तो देखिए क्या हो गया, चूर चूर हो गया इसका। एक छोटा बालक थोड़ी लात मार के ऐसे कर सकता है, ये तो छोटे बालक है, बच्चे हैं, बच्चों की बोली है ये, इनके ऊपर थोड़ी हम विश्वास कर सकते हैं। ऐसे कई बार घटनाएं हुई जब साक्षी केवल बालक थे, कृष्ण लीला में हम देखते हैं बाल लीला में, और बालकों की बात नहीं मानी बड़ों ने, सोचा ये तो बच्चे हैं, ऐसे यूं ही बोले जा रहे हैं, इनको क्या मालूम। तो इस प्रकार से बच्चों की बात को नहीं मानी, बच्चे बोलने लगे नहीं नहीं हमने देखा है कृष्ण ही लात मारा इसलिए ये टूट गया। तो खैर ब्रजवासियों ने नहीं माना बात, उन्होंने सोचा कि कोई असुर आए होंगे, राक्षस आए होंगे, इन्होंने किया होगा, हो सकता है कि कोई बुरे ग्रह का प्रभाव है। और इस प्रकार से माता यशोदा ने तुरंत कृष्ण को अपने गोद में ले लिया और स्तनपान करना आरंभ कर लिया, और कृष्ण आराम से दूध पीने लगे, उनकी इच्छा पूरी हो गई। उनको चाहिए था कि मेरे ऊपर सबका ध्यान हो, जैसे साधारण बालक की इच्छा होती है ना कि सभी लोग मेरा वाहवाकार करें और सभी लोग मेरे ऊपर ध्यान दें, मेरा लालन पालन करें। तो कृष्ण भगवान भी चाहते थे कि सभी का ध्यान मेरे ऊपर हो, तो कैसे ध्यान आकर्षित किया उन्होंने, ऐसे करके। तो परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। प्रभुपाद जी टीका में बताते हैं कि इन लीलाओं, ये लीलाएं इतने आकर्षक हैं कि भगवान के अन्य अवतारों में जो लीलाएं होती हैं, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, ये लीलाएं इतने आकर्षक नहीं है कि जितने कृष्ण के बाल लीलाएं हैं। इसलिए ये लीलाएं बहुत ही रम्य है, सुनने लायक है, और परीक्षित महाराज इसमें अधिक से अधिक रस की अनुभूति करते जा रहे थे कि कहां भगवान श्री कृष्ण और कहां एक साधारण बालक की तरह रोकर हर जैसे जिद कर रहे हैं, लात मार रहे हैं, कहां और कहां ये और कहां वो। तो परीक्षित महाराज सोच रहे हैं अद्भुत अर्भकम, ऐसे अद्भुत बाल लीला भगवान की है, वास्तव में ये बहुत ही विचित्र बातें हैं। तो उधर ये जो गाड़ी थी इसमें एक असुर ने आश्रय लिया हुआ था जिसका नाम था शकटासुर, और कृष्ण भगवान तो जानते थे, तो कृष्ण भगवान उधर माता यशोदा का ध्यान चाहते थे, दूध पीना चाहते थे, और दूसरी ओर उनको मालूम था कि इस गाड़ी में इस असुर ने आश्रय लिया हुआ है और इसका भी मुझे वध करना है, क्योंकि ये अभी आकर मेरे रिश्तेदारों को, ब्रजवासियों को तंग करने की इच्छा लेकर आया है। तो दोनों कार्य भगवान ने एक लात में ही संपन्न कर लिए। ऐसे हम कहीं लात मारे तो बस से कार्य क्या होता, हमारे पैर को ही दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हड्डियां बिठानी पड़ती हैं, लेकिन कृष्ण भगवान ने छोटे से ऐसे यूं स्पर्श किया और देखो आसानी से कितना कितना हंगामा हो गया। प्रभुपाद जी और सुंदर टीका देते हैं, बताते हैं कि देखो जब वामन देव आए थे तो वामन देव को ब्रह्मांड के आवरण में छेद करने के लिए अपने पैरों को फैलाना पड़ा। वो बलि महाराज के दरबार में थे और उनको पैर फैलाकर इतने लंबे करने पड़े और फिर वो ब्रह्मांड के आवरण का छेद कर पाए। उधर नरसिंह देव भगवान आए, उनको युद्ध करना पड़ा, युद्ध करने के बाद में हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। लेकिन कृष्ण भगवान को इस असुर का वध करने के लिए कोई ऐसे प्रयास नहीं करना पड़ा, कष्ट नहीं उठाना पड़ा। क्या किया? केवल पैर का स्पर्श कर दिया और धड़ाक से सारी जो घात गाड़ियां गिर पड़ी और वो मर गया, असुर शकटासुर मर गया उधर। तो यह है बालकृष्ण की अद्भुत शक्ति, आसानी से उन्होंने मार दिया। तो ये शकटासुर जो है ये वास्तव में एक भूत था, भूत का शरीर मिला था उसे, क्योंकि पिछले जन्म में ये शकटासुर जो है उत्कच नाम का पुत्र था हिरण्याक्ष का। हिरण्याक्ष जो हिरण्यकश्यप के भाई थे उनका पुत्र था और उन्होंने लोमश मुनि के आश्रम में जाकर बहुत पेड़ वगैरह उखाड़ दिए थे और हंगामा कर दिया था वहां पर। तो लोमश ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है, इसलिए मैं श्राप तुम्हें देता हूं कि तुम शरीरहीन हो जाओगे, अर्थात तुम्हें भूत का शरीर मिलेगा। और जब घबराकर फिर उत्कच ने क्षमा याचना की तो लोमश मुनि ने कहा कि ठीक है, बहुत हजारों हजारों साल बाद में साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श जब होगा तो तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी, भूत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये शकटासुर जो थे हवा का शरीर उनका था, वैसे भी गर्ग संहिता में बताया गया है। तो इस लीला से हम समझ सकते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं ऐसे सुंदर लीलाओं का श्रवण करके इसे दंत कथा नहीं समझते, नहीं सोचते हैं कि ये कैसे संभव है कि कोई गाड़ी के रूप में कोई असुर भला हो सकता है। अगर भौतिक बुद्धि हम इस्तेमाल करें तो ये तो बिल्कुल असंभव बात है, लेकिन परीक्षित महाराज ने ऐसे हृदय में ऐसा संशय नहीं आया कि एक हाथ गाड़ी के रूप में असुर कैसे हो सकता है। वो जानते थे कि कुछ भी चीज संभव है कृष्ण लीला में, भगवान के लिए क्या असंभव है। और वैसे भी इस असुर ने असुर वैसे जो भूत होते हैं उनको कोई ना कोई शरीर का तो आश्रय लेना पड़ता है, तो इस भूत ने इस गाड़ी का आश्रय लिया हुआ था, इसलिए उनका नाम आया शकट आसुर। शकट मतलब ऐसे हाथ गाड़ी, इसलिए इस लीला को शकट भंजन भी कहा जाता है, जैसे पूतना मोक्ष, पूतना वध, और इस प्रकार से इस लीला को शकट भंजन भी कहा जाता है। तो उधर ब्राह्मण जो थे वो आए और माता यशोदा सोच लगी कि अभी किस प्रकार से बुरे ग्रह का जो प्रभाव है उसे नष्ट किया जाए, और वो सोच रही थी कि ये कोई ऐसे बुरे ग्रह की वजह से ही है। तो उन्होंने सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, फिर से कुछ भी होता था ब्राह्मणों को बुलाती थी माता यशोदा कि थोड़े वैदिक मंत्र कहो और जो भी अशुभ जो प्रभाव मेरे बच्चे पे पड़ा है उसको आप निकाल दो। तो ब्राह्मणों को निमंत्रण किया उन्होंने और फिर से माता यशोदा खुश हो गई कि अभी ठीक है, अभी मेरा बच्चा सुरक्षित है। भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत में बताते हैं कि शकटासुर भी कई अनर्थों के प्रतीक हैं, जिस प्रकार से पूतना किन अनर्थों के प्रतीक हैं, झूठे गुरु, हमारे हृदय में जो भोग भावना होती है, कैवल्य की भावना होती है, मिथ्या अहंकार की भावना होती है, ये सारे भावनाओं के प्रतीक पूतना है। तो इसी प्रकार से शकटासुर किस चीज के प्रतीक है, आलस, ठीक है, और कोई बता सकते हैं शकटासुर? तो प्रभुपाद ये भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि शकटासुर जो है ये झूठे झूठ के प्रतीक है, झूठे बात बताना और झूठे आदतों बुरे आदतें जो हैं पुराने इस जन्म के और पूर्व जन्म के जो बुरी आदतें हैं इनको बोझ संभालना, क्योंकि हाथ गाड़ी जो शकट होता है उसके ऊपर बोझ रखा जाता है। तो इसी प्रकार से शकटासुर का मतलब है कि हम पुराने हमारे जो बुरी आदतें हैं उनको हम कंधों पर रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। लेकिन जब हम कृष्ण भगवान को निमंत्रण करते हमारे हृदय में कि आइए इस शकट का भंजन कीजिए और हमने जो बुरी आदतें हमारे कंधों पे लगाई हुई हैं उनको नीचे फेंक दीजिए, जैसे कि कृष्ण भगवान ने उस शकट का भंजन करके सारे उसके ऊपर जो भी बर्तन थे उनको इधर उधर कर दिया, उसी प्रकार से हमारे हृदय में जो हम पुराने जमाने से इतने जन्मों से जो हम बुरी आदतें साथ में लेकर चल रहे हैं उनको आप खत्म कर दीजिए। और साथ साथ शकटासुर इस बात का भी प्रतीक है आलसीपन, आलस, मंद बुद्धि और अहंकार। तो इस प्रकार से शकटासुर जो हमारे हृदय में है उसका हमें त्याग करना चाहिए। जब आलस होता है हमें कि जाप नहीं करना है, क्लास में नींद आती है, सुबह नहीं उठना है, उस समय में जानना चाहिए कि शकटासुर हमारे हृदय में बोल रहे हैं। तो कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान ये शकटासुर जो हमारे हृदय में आया है बहुत खतरनाक है, इसको आप खत्म कर दो, लात मार के चूर चूर कर दो। तो ऐसे होना चाहिए। तो आगे चल के माता यशोदा बहुत घबराई हुई थी कि क्या है ये, बार बार हर कदम कोई ना कोई खतरा हमारे बच्चे के ऊपर आता है। और ऐसे समय बीतता गया, माता यशोदा का लालन पालन कृष्ण भगवान के प्रति चलता गया। 3 महीने से 4 महीने, 4 महीने से और भी ऐसे समय बीतकर कृष्ण भगवान की आयु करीब 1 साल की हो गई। इस समय जब माता यशोदा नंद बाबा ने सोचा कि इनका जन्म दिवस मनाना चाहिए, तो जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया, अच्छे ढंग से सब ब्रजवासियों को बुलाया गया। और जब ये हो गया थोड़े ही दिन बाद में माता यशोदा कृष्ण भगवान को अपने गोदी में लेकर बैठी थी, लालन पालन कर रही थी, जैसे माताएं कभी बच्चों को करते हैं, हाथ में लेकर ऊपर फेंकते हैं फिर पकड़ लेते हैं, उससे बच्चे को भी आनंद आता है, मां को भी आनंद आता है। तो माता यशोदा ऐसे कर रही थी और अचानक उन्होंने देखा कि वो कृष्ण को उठा नहीं पा रही है। इतना ही नहीं, कृष्ण इतने भारी बन गए कि मानो उनका वजन ब्रह्मांड की तरह हो गया। तो पैरों में इतना वजन आ गया कि उनको जबरदस्ती कृष्ण भगवान को नीचे जमीन पर रखना पड़ा। अचानक इनके हृदय में भय आ गया कि अब यह क्या हो गया कि कृष्ण ऐसे अचानक भारी कैसे बन गए। तो कोई अवश्य किसी बुरे ग्रह का प्रभाव है या तो कोई असुर का प्रभाव है। तो कृष्ण को तुरंत नीचे रख दिया और चली गए ब्राह्मणों को बुलाने के लिए, क्योंकि जब भी कोई संकट आते थे तो ब्राह्मण को बुलाने जाते थे कि आप कुछ मंत्र बोलो, कुछ यज्ञ करो, कुछ करो। और नारायण का स्मरण किया उन्होंने कि हे नारायण मेरे कृष्ण का आपकी आप रक्षा करो। योग माया के प्रभाव से माता यशोदा ये नहीं जानती थी कि नारायण के भी प्रभु उनके गोद में बैठे हुए हैं, नारायण को भी शक्ति देने वाले उनके गोदी में हैं, तो नारायण उनकी रक्षा क्या करेंगे। तो इस प्रकार से माता यशोदा अपनी योग माया के प्रभाव से इधर उधर चिंता में भाग रही थी कि ये अद्भुत कुछ घटना हुई है, कृष्ण इतने ब्रह्मांड की तरह भारी हो गए। तो फिर ब्राह्मणों को बुलाने के कार्य में व्यस्त रही, फिर इधर उधर घरेलू कार्य में व्यस्त हो गए और भूल गई इस बात को। तो उधर त्रिणावर्त नाम का एक असुर था जिसने चक्रवात या पवन चक्र का रूप धारण किया था। पवन चक्र जानते हैं ना क्या है, वर्ल बड़ा तूफान होता है जो गोल 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 ऐसे घूम के आता है, वर्लविंड जिसे कहते हैं, पवन चक्र या चक्रवात। तो त्रिणावर्त को भी कंस ने भेजा था कि जाके कृष्ण को ढूंढ निकालो और कृष्ण की हत्या करो। तो त्रिणावर्त को पता चला था कि कृष्ण यहां पर है, गोकुल में है, नंद बाबा के घर में है। तो घूमते 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 आया त्रिणावर्त। त्रिणावर्त ने कृष्ण को उठा लिया उठा के आकाश में ले गया, ऊपर ऊपर हवा में। अब देखिए, कृष्ण भगवान जानते थे कि तृणावर्त आने वाला है, इसलिए उन्होंने अपने आप को भारी कर दिया। अगर भारी नहीं करते तो माता यशोदा उनको नीचे नहीं रखती, और अगर माता यशोदा नीचे नहीं रखती तो तृणावर्त तक आते तो माता यशोदा को भी साथ में ले जाते उनके। तो कृष्ण को इच्छा ये नहीं थी कि माता यशोदा को कोई कष्ट हो। कृष्ण ने जान लिया कि तृणावर्त आने वाला है, उसको तो मैं सबक सिखाऊंगा, लेकिन सबक सिखाते समय कहीं ऐसा ना हो कि माता यशोदा को कोई कष्ट हो जाए। इसलिए उन्होंने ऐसी योग सिद्धि प्रकट की, महिमा सिद्धि, इसे इतने भारी हो गए वो कि माता यशोदा को उनको नीचे रखना ही पड़ा। अब तृणावर्त जो है वो बड़े असुर थे, और जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो बड़े बड़े असुर आए वृंदावन में, ये साथ साथ बड़े योगी भी थे, इसलिए इनको सारी योग सिद्धियां इनके पास में थी, जैसे कि अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति इत्यादि। तो ये महिमा सिद्धि जो है इसका मतलब है कि भारी बनना। तो जब तृणावर्त आए वहां, तृणावर्त ने भगवान को उठा लिया, तो तृणावर्त के भी महिमा सिद्धि प्रकट की। और इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को हल्का बना दिया, घास से भी हल्का बना दिया, और हल्का बनाकर इसलिए बनाया ताकि तृणावर्त उन्हें आसानी से ऊपर ले जाए, और उधर कृष्ण भगवान आराम से मजा ले रहे हैं इस उड़ान का, जैसे बच्चे जाना पसंद करते हैं। यहां जब वो मेला होता है तो मेले में वो ऊपर नीचे जाने के जो खेल रहते हैं ना, उसमें ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, तो बच्चों को बड़ा मजा आता है उसमें। तो कृष्ण भगवान की चाहते थे, आखिर कृष्ण में ये इच्छा है ऐसे आनंद लेने के लिए, इसलिए तो हमारे अंदर है, इसे भी हम भी जाना चाहते हैं वो गोल में, वो क्या कहते हैं उसको, मेरी गो राउंड, जायंट व्हील कहते हैं। तो उसमें बैठने की इच्छा हमारे अंदर क्यों है, क्योंकि कृष्ण के अंदर है। कृष्ण बैठना चाहते थे, कृष्ण चाहते थे कि हमारे यहां ऐसे कोई मेला नहीं लगती है तो हमें ऊपर नीचे थोड़ा उड़ान करना है ना, तो उस समय इंडियन एयरलाइंस था ना कुछ, चलो तृणावर्त आए तो आनंद मजा ले ले उड़ान का। ऊपर गए तो कृष्ण भगवान भी साथ में आनंद ले रहे, वाह मजा आ गया। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि चलो ठीक है, अभी ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो थोड़ा इसके साथ में मजा करें तृणावर्त के साथ में। तो दोनों के बीच में योग सिद्धि की स्पर्धा हुई। तृणावर्त भी महिमा शक्ति लगा रहे थे, तो कृष्ण भगवान ने सोचा जब मैं माता यशोदा के गोदी में सोया हुआ था तब मैंने महिमा सिद्धि प्रकट की, अभी भी थोड़ा कुछ महिमा सिद्धि प्रकट कर लूं। तो भारी होने लगे कृष्ण, धीरे 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 से वजन बढ़ गया, और जैसे वजन बढ़ने गया तो तृणावर्त सोचने लगे, अरे ये क्या हो रहा है, मैं ऊपर जा रहा हूं लेकिन कुछ ये वजन भारी होने की वजह से अब मैं नीचे खींच लिया जा रहा हूं। तो तृणावर्त की योग सिद्धि भगवान कृष्ण की योग सिद्धि के सामने क्या है, भगवान श्री कृष्ण तो योगेश्वर है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, तो कृष्ण योगेश्वर होने के नाते सारे योग सिद्धियों के प्रभु हैं। जो भी अन्य योगी, बड़े बड़े छोटे छोटे योगी जो भी हैं, उनकी जो भी योग सिद्धियां हैं तो कृष्ण से ही तो आती हैं। तो कौन कृष्ण से स्पर्धा कर सकता है योग सिद्धियों में या किसी भी चीज में। तो तृणावर्त ने अपनी पूरी जोर लगाई, पूरी शक्ति लगाई महिमा सिद्धि करने के लिए, लेकिन कृष्ण के सामने जितना वो अपने वजन को बढ़ाए उतना कृष्ण अपने वजन को बढ़ाते, और आखिर में तृणावर्त समझने लगे कि अभी हमारे कृष्ण के सामने, बाल कृष्ण के सामने हमारे कुछ चलने वाले नहीं है, और सोचने लगे कि ये बड़ा अद्भुत बालक है कि इतना वजन कैसे बढ़ गया उसका। तो उस समय तृणावर्त की इच्छा क्या हुई, अगर हमारे ऊपर कोई बैठा हो जिसका वजन भारी हो तो हम क्या, हमारे मन में क्या इच्छा होगी, उसको फेंक दे नीचे, जैसे पूतना की हुई थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध से पूतना का स्तनपान करना चाहा, और जब बहुत दर्द हुआ पूतना को, तो पूतना ने क्या कोशिश की कि कृष्ण को हटाए अपने शरीर से, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, छोड़ा नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान जब किसी को पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं, बड़े चिपकू हैं कृष्ण। तो उसी प्रकार से जब कृष्ण भगवान तृणावर्त के ऊपर बैठे थे तो पकड़ लिया, तो ऐसे पकड़ लिया कि छोड़ने का नाम न लें। क्योंकि इन असुरों को पूतना त्रिनावट जैसे असुरों को मालूम होना चाहिए था, पकड़ने के पहले ही मालूम होना चाहिए था कि इसका परिणाम क्या होगा, कि एक बार हम पकड़ लेंगे तो कृष्ण भी हमें ऐसे पकड़ेंगे कि कृष्ण ही छोड़ेंगे नहीं हमें। लेकिन उनको जब कृष्ण को पकड़ने के पहले ये सोचा नहीं तो अभी पछताना पड़ा। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, पकड़ा तो ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा कि त्रिनावत की गला ही पकड़ लिया और त्रिनावत के मुंह से आवाज नहीं निकली। त्रिनावत अपने हाथ पैर को भी हिला नहीं सके, अपनी आंखें जो है बिल्कुल बाहर आ गई, क्योंकि इतना प्रभाव यहां जोर लगा दिया कृष्ण भगवान ने। और कृष्ण भगवान आराम से बैठे हुए हैं त्रिनावत के ऊपर, कोई कष्ट नहीं हुआ उनको, आराम से बैठे हुए। और उधर त्रिनावत की बुरी हालत हो गई और प्राण निकल गए, और प्राण निकले तो भारी वजन से वो गिर पड़े। गिरे तो एक ब्रज के बाहर खेत में गिरे और वहां एक बड़े पत्थर के ऊपर आके गिर पड़े, हड्डी पसली हो गई, सब हड्डी उड्डी टूट गई। और जब ये भीषण आवाज सुनी तो सारे ब्रजवासीगण दौड़ते हुए आ गए। जब त्रिनावत आया वहां, क्योंकि वो पवन चक्र था इसलिए सारे धूल जो है धूल की तूफान हो गई सारे ब्रज में, और इस धूल की तूफान की वजह से सारा अंधकार हर जगह फैल गया, जैसे साइक्लोन के समय होता है, बड़े तूफान के समय होता है कि धूल इतना उड़ जाता है कि हम देख नहीं पाते। तो माता यशोदा ने जब वहां कृष्ण को नीचे रखा हुआ था और इधर उधर ब्राह्मणों को ढूंढने के लिए गई थी, जब धूल इतनी बढ़ गई और कुछ देख नहीं पाए तो माता यशोदा कृष्ण को ढूंढने लगी, कहां है कृष्ण। और जब कृष्ण नहीं मिले तो उस समय माता यशोदा बिल्कुल शोक के मारे गिर पड़ी, जैसे एक गाय अपने बछड़े को ढूंढते ढूंढते गिर पड़ती है। और माता यशोदा के चीखें सुनकर जब धूल की जो आवरण है वो थोड़े नीचे हो गया था, उस समय सारे गोपियां दौड़ के आई माता यशोदा के पास कि क्या हुआ। माता यशोदा ने सोचा कि कृष्ण कहां है, देखो कृष्ण दिखाई नहीं पड़ रहा है, अवश्य कोई राक्षस या असुर ने उसे कोई ले गया होगा। तो गोपियां भी इधर उधर ढूंढने लगी, गोपियों को भी कृष्ण नहीं मिले तो गोपियां भी रोने लगी। तो सारे ब्रजवासी जो गोपियां हैं सब रोने लगी, कृष्ण कहां है, कृष्ण कहां है, क्योंकि वो कृष्ण से इतना प्रेम करती थी, अपने बच्चों से भी अधिक प्रेम करती थी। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तो बड़े चिंता में पड़ गए। और जब उन्होंने भीषण आवाज सुनी ब्रज के बाहर तो दौड़ते हुए सारे गोपियां वहां गई, और क्या देख रहे हैं कि एक विशाल असुर है जिसकी हड्डियां टूट गई हैं बिल्कुल, और उसके छाती के ऊपर कृष्ण आराम से खेल रहे हैं, मुखारविंद में हंसी है और खेल रहे जैसे मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो देखिए यह भी बात गोपियों ने देखी थी पूतना के शरीर के ऊपर, कि जब पूतना का वध हुआ तो कृष्ण भगवान आराम से खेल रहे थे स्तनों पर जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए इसके बारे में सनातन गोस्वामी बहुत सुंदर टीका करते हैं वैष्णव तोषणी नाम के ग्रंथ में। पूतना के वध के बारे में सनातन गोस्वामी समझाते हैं कि वास्तव में जब कृष्ण भगवान की लीला में असुरों का वध होता है तो कृष्ण के अंदर जो विष्णु है वो वध करते हैं, कृष्ण नहीं वध करते असुरों का। इस बात की चर्चा हमने सोमवार को भी की थी, आपको याद है क्या क्या बात बताई थी इसके बारे में। कृष्ण भगवान केवल श्याम सुंदर रूप में लीला करते हैं, अपनी बाल लीला करते हैं। जब कृष्ण भगवान अवतार लेते हैं, साक्षात कृष्ण आते हैं, तो उनके संग में कौन आते हैं, सारे उनके पार्षद उनके अवतार आते हैं, जैसे कि संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव नारायण विष्णु रूप, सारे विष्णु रूप नरसिंहदेव रामचंद्र मत्स्य कूर्मा सब आते हैं उनके साथ में, उन्हीं के शरीर में होकर आ जाते हैं, उनके दिव्य शरीर में रहते हैं। तो सारा उनका सारे जो अवतार हैं उनके उनके साथ में आते हैं। वैसे जब साधारणतः ये जो अवतार हैं वो क्षीरोदकशायी विष्णु के माध्यम से आते हैं इस पृथ्वीलोक के ऊपर, लेकिन जब गोविंद श्याम सुंदर श्री कृष्ण पधारते हैं ये संसार में तो फिर उन्हीं के साथ में आ जाते हैं। और वध करने का काम है कृष्ण का नहीं है, कृष्ण को समय नहीं है वध करने के लिए, कृष्ण को तो और बहुत से काम है, गाय को चराना। उनके अंदर जो विष्णु है वो करते हैं। तो पूतना के संदर्भ में सनातन गोस्वामी बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं कि बाल कृष्ण को बिल्कुल मालूम ही नहीं था कि पूतना का वध हो रहा है, क्योंकि कृष्ण भगवान के दिव्य शरीर का आश्रय लेकर विष्णु ने पूतना का वध किया। और इसीलिए जब कृष्ण भगवान पूतना के स्तनों पे खेल रहे थे, मानो ऐसे कि उन्हें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, और वास्तव में सनातन गोस्वामी बताते हैं उनको मालूम नहीं था। ये कृष्ण की लीला है, कृष्ण की योग माया लीला शक्ति कृष्ण के ऊपर ऐसे प्रभाव कर रही थी कि बाल कृष्ण को उस आनंद का रस प्राप्त पान करने के लिए बिल्कुल अज्ञान था कि मैं ये पूतना मर चुकी है। आखिर छोटे बालों को क्या मालूम है मृत्यु क्या है जीवन क्या है? 3 महीने को बालों को कुछ मालूम होता है कि मृत्यु क्या है, कौन मरा हुआ है कौन जीवित है? तो बाल कृष्ण को कुछ नहीं मालूम था, लेकिन बाल कृष्ण के अंदर जो विष्णु स्वरूप थे उन्होंने पूतना का वध कर दिया। इसलिए बाल कृष्ण बड़े आनंद से आराम से मौज कर रहे थे पूतना के शरीर के ऊपर। और सनातन गोस्वामी इसके लिए उपमा देते हैं कि जैसे एक राजा अपने महल में अंदर बैठा हुआ होता है, अच्छा अच्छी दावत ले रहा होता है, और महल के बाहर ही हो सकता है उसको दरबार में भी उन्हीं के मंत्री किसी गुनहगार को दंड दे रहे हैं। किस कैसे दंड देने का अधिकार मिला उनको? राजा की शक्ति है, राजा का के आदेश उनको, राजा का बल उनके पास है, क्योंकि वो राजा के मंत्री हैं। को राजा के नाम पर राजा के शक्ति का आश्रय लेकर वो दंड दे रहे हैं गुनहगार को। राजा को इस बात का पता नहीं है, अपने महल में अंदर बैठ के वो आराम से खा रहे हैं मौज मना रहे हैं, लेकिन राजा की शक्ति का इस्तेमाल करके मंत्री दंड दे रहे हैं गुनहगार को। ठीक उसी प्रकार से विष्णु ने कृष्ण भगवान का आश्रय लिया और कृष्ण को न पता रहते हुए भी उन्होंने उनके शरीर और उनके अंग का सहारा लेकर आश्रय लेकर पूतना का वध किया। इसलिए वो आराम से खेल रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक उसी प्रकार से भी जब वो तृणावर्त के शरीर के ऊपर थे तो ये भी कार्य विष्णु ने ही किया। कृष्ण भगवान तो आराम से खेल ही रहे थे, उड़ान का मजा ले रहे थे, और उनके अंदर विष्णु जो है उन्होंने तृणावर्त का गला दबाया और गला दबाकर गिरा दिया तृणावर्त को। और सारे गिरते समय भी कृष्ण बाल कृष्ण मजा ले रहे, जैसे उतार का उन्होंने चढ़ाव का उन्होंने आनंद लिया, उतार का भी आनंद लेते रहे। और जब तृणावर्त का शरीर वहां पर टूट गया था, वहां पड़ा था, फिर भी छाती के ऊपर आराम से खेल रहे मानो कि कुछ नहीं हुआ है। ऐसे आप हवाई अड्डों के हवाई जहाजों के एक्सीडेंट के बारे में पढ़ते हैं ना कि हवाई जहाज सब ऊपर से गिरती है तो कोई लोग बचते हैं, 500 फुट से भी अगर हवाई जहाज गिर जाती है तो सारे लोग मर जाते हैं। कृष्ण भगवान इतने ऊपर गए थे नावट के साथ में, वो भी हवाई जहाज जैसे थे, वो हवाई जहाज गिर पड़ी, लेकिन कृष्ण भगवान के शरीर में एक बाल भी नहीं हिला। तृणावर्त के हड्डी पसली हो गई लेकिन कृष्ण भगवान के एक बाल भी नहीं हिला। ये है भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं। तो ऐसे सब सुनकर परीक्षित महाराज और भी आश्चर्यचकित रह गए। और वहां जो गोपियां और ब्रजवासी एकत्र थे, हम कल्पना कर सकते हैं कि उनके मन में क्या बीत रहा होगा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कृष्ण ने कैसा अद्भुत कार्य किया है, कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं, ये नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि फिर से भगवान हमारे कृष्ण को भगवान ने बचा लिया है, अवश्य हमने पिछले जन्म में कोई पुण्य कार्य किए होंगे, जैसे लंबे लंबे सड़क बनाना, सड़क के किनारे पे पेड़ करना ताकि लोगों को छाया मिल जाए जो इधर उधर सफर कर रहे हैं, हमने कोई कुएं खोदे होंगे, ऐसे कोई पुण्य कार्य किए होंगे जिनकी वजह से अभी हमें यह सौभाग्य मिला कि हमारे कृष्ण को मृत्यु के मुख में राक्षस ने चुरा के ले गए, लेकिन मृत्यु के मुख से वो लौट कर आया है हमारे पास। ये केवल हमारे पुण्य की वजह से होगा, हमारे कुएं खोदने की वजह से होगा। तो इतने सरल मासूम भोले भाले थे ब्रजवासी, योग माया के प्रभाव से वो ये नहीं सोच रहे थे कृष्ण ने क्या लीला की है, कृष्ण कैसे अद्भुत कार्य किए हैं, उनको उनके समझ के बाहर था। ये केवल इतना ही सोच रहे थे कि अवश्य अपने नारायण ने ही अपने लाडले को कृष्ण को बचा दिया है। तो इस प्रकार से माता यशोदा ने सोचा कि ये तो हद से बाहर, हर रोज कोई ना कोई दुर्घटना, हर रोज ऐसे कोई ना कोई खतरा। तो क्या किया माता यशोदा ने, ब्राह्मणों को बुलाओ। फिर से ब्राह्मणों को बुला दिया और वहां पे यज्ञ हुए, और ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जिनके हृदय में कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई लोभ नहीं था, किसी के प्रति कोई घृणा नहीं थी, जो सरल थे, शुद्ध थे, और उनको बुलाकर जो है शुद्धिकरण के, संरक्षण के क्रियाएं किए, और ऐसे सब करके उन्होंने ब्राह्मणों को पूरी तरह से संतुष्ट किया, उनको हृदय से दान दिया, सुंदर सुंदर गाय और अनाज धन। और फिर ब्राह्मण संतुष्ट जब हुए तो उन्होंने अपने हृदय से कृष्ण को आशीर्वाद दिया, और नंद महाराज कह रहे थे ब्राह्मणों से कि मेरे बाल, मेरे कृष्ण को आप आशीर्वाद दो, और ब्राह्मणों ने दिया। अब देखिए भला कृष्ण को कौन आशीर्वाद दे सकता है, कृष्ण तो सभी को आशीर्वाद देने वाले हैं, लेकिन कृष्ण ब्राह्मणों से भी आशीर्वाद स्वीकार करते हैं। ब्राह्मण इतने प्रिय है कृष्ण के लिए, गो ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जगत का हित सोच के, हित के बारे में सोचने वाले हैं कृष्ण। ब्राह्मणों को, गायों को बहुत प्रिय, प्रेम करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के हाथ से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं बाल कृष्ण। ये है कृष्ण की महिमा। तो अगर कृष्ण ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें कितना आतुर होना चाहिए वैष्णवों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। कृष्ण हमें सबक सिखा रहे हैं, हमारे लिए संदेश दे रहे हैं कि देखो मैं भी भक्तों के, ब्राह्मणों के आशीर्वाद के लिए कितना आतुर हूं, तो तुम्हें और कितना आतुर होना चाहिए। और इस प्रकार से इस शुद्ध ब्राह्मणों के आशीर्वाद में बहुत शक्ति है। प्रभुपाद जी टीका बताते हैं कि जो ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लेते हैं, आजकल के जमाने में जो जाति ब्राह्मण होते हैं, उनको हमारा सारा सम्मान है, हाथ जोड़ते हैं उनके सामने, लेकिन उनके अंदर यह शक्ति नहीं है कि वो ऐसे आशीर्वाद दें जैसे इन ब्राह्मणों ने कृष्ण को किया था। वो शक्ति इन ब्राह्मणों में नहीं है, आजकल के ब्राह्मणों में नहीं है, जो केवल 50 पैसे के एक यज्ञोपवीत पहनकर सोचते हैं कि हम ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण के गुण न होते हुए कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं। लेकिन ब्रज में जो ब्राह्मण बुलाए गए थे माता यशोदा नंद बाबा द्वारा, वे वास्तव में शुद्ध ब्राह्मण थे, इसलिए उनके आशीर्वाद में शक्ति थी। तो ऐसे ब्राह्मणों को संतुष्ट किया नंद बाबा ने, और फिर वहां से वो कृष्ण का गुणगान करते हुए चले गए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे सुंदर लीलाएं हुई भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला, बाल अवस्था में। भक्ति विनोद ठाकुर त्रिणावर्त के बारे में बताते हैं कि ये है मिथ्या अहंकार। त्रिणावर्त मिथ्या अहंकार के प्रतीक हैं, जो कि भौतिक विद्वत्ता से उत्पन्न होती है। जब आदमी ज्यादा विद्वान बनने का प्रयास करता है और उसमें कोई भक्ति भावना नहीं होती है, जैसे कि केशव कश्मीरी के बारे में हम, आप कथा जानते हैं कि केशव कश्मीरी पंडित थे, विद्वान थे, लेकिन भक्ति भावना बिल्कुल नहीं थी। तो उसकी वजह से केशव कश्मीरी की बीमारी क्या हुई, कौन सी बीमारी थी, अहंकार, घमंड। इतना भयंकर घमंड हो गया, वो तर्क वितर्क में, वाद विवाद में सभी को हरा सकते थे, कोई उनका सामना नहीं कर पाता था, इसलिए उनका घमंड आ गया। और घमंड जब आया तो चैतन्य निमाय पंडित ने उनके घमंड का क्या किया, चूर चूर कर दिया। तो ये घमंड जो है, जो कि ऐसे विद्वत्ता से उत्पन्न होता है जो कि भक्ति भावना से विरुद्ध है, तो ऐसा घमंड त्रिणावर्त का प्रतीक है। तो इसलिए हमें याचना, कृपा याचना करनी चाहिए भगवान से कि ऐसे घमंड अगर हमारे अंदर आए तो उसको कृपा करके गला पकड़ के उसे आप खत्म कर दीजिए। भक्ति में भी ये बताया जाता है। रूप गोस्वामी हमें सावधान देते हैं, सावधान कराते हैं कि ज्यादा ग्रंथ मत पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो। क्यों? फिर हम सोचेंगे हम अच्छे हैं, हम सबसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन हम ऐसे लगता है कि हमारे भक्त केवल रूप गोस्वामी की इसी एक आदेश का पालन करते हैं और इसको इतना सीरियसली लेते हैं कि ग्रंथ पढ़ते ही नहीं है, उसको दूसरी ओर ले जाते हैं। और कभी ग्रंथ हम कहते हैं भक्तों को कि आप ग्रंथ पढ़ो पढ़ो, हर रोज प्रभुपाद ने कहा 2 घंटे पढ़ने चाहिए। बताते रूप गोस्वामी बताया कि ग्रंथ ज्यादा नहीं पढ़ने चाहिए, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, 2 घंटे कम से कम पढ़ने में ज्यादा नहीं कहलाते, और वैसे भी प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ेंगे तो कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि जो जरूरत से ज्यादा है, केवल ये दिखाने के लिए कि मैं कितना पंडित हूं, मैं कितना विद्वान हूं, ऐसे विद्वान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे विद्वान बनेंगे भी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा, भक्ति जीवन में बिल्कुल एक बंधन बन बैठेगा। इसलिए शंकराचार्य क्या बताते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षते दुक्कृण कारणे। कि हे मूढ़, हे तुम अपने व्याकरण में और अपने विद्वत्ता में इतने मग्न रहे हो दुक्कृण कारणे कि तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी मृत्यु करीब आ रही है और तुम्हें अभी खा जाएगी, काल सर्प आएगा तुम्हें खा जाएगा, और मृत्यु के समय तुम्हारा व्याकरण क्या होगा, कोई काम का नहीं आएगा, तुम्हारा वाद विवाद और विद्वत्ता कहां जाएगी, कोई लाभ का नहीं होगा। इसलिए क्या करो, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इसलिए हे मूढ़, गोविंद को भजो और ये विद्वत्ता छोड़ दो। तो हमारे गोस्वामी, हमारे भक्त आचार्य भी विद्वान थे, बड़े बड़े विद्वान थे, जैसे जीव गोस्वामी। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जीव गोस्वामी जैसा दार्शनिक आजकल आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। लेकिन कितने नम्र थे, क्योंकि भक्ति भावना थी उनके अंदर, शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति के सबसे संबंधित जो भी ग्रंथ है अगर उनको पढ़ें और साथ साथ वैष्णवों के सामने हम नम्र रहे हमेशा, तो फिर ये घमंड तिनावर्त हमारे जो हृदय में है वो अपना क्रूर जो कुरूप मुख है वो ऊपर नहीं करेगा। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि ये जो तिनावर्त है ये अपने पिछले जन्म में पंड्या देश के राजा थे जिनका नाम था सहस्राक्ष, और ये एक बार नग्न अवस्था में अपने 10,000 रानियों के साथ में बहुत आवाज कर रहा था और दुर्वास मुनि को अपने तपस्या में उन्होंने तपस्या को भंग कर दिया। दुर्वास मुनि वैसे तो आप जानते हैं बहुत क्रोधी हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि वो शिवजी के अंशावतार हैं। तो उन्होंने दुर्वासा मुनि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हें ऐसे असुर बनना पड़ेगा पृथ्वी लोक पर और तुम 1,00,000 साल तक ऐसे रहोगे। और उस समय तृणावर्त जब सहस्राक्ष ने कृपा याचना की तो दुर्वासा मुनि कहा कि ठीक है, जब कृष्ण आएंगे भगवान साक्षात वह लीला करेंगे तुम्हारी मुक्ति करा देंगे, बेड़ा पार करा देंगे, तुम्हारा उद्धार करा देंगे। तो इस प्रकार से तृणावर्त असुर को हमारे हृदय में जब वो उसका मुख दिखाता है तो भगवान से प्रार्थना किन करनी चाहिए कि ये जो मनगढ़ंत ढंग से मेंटल स्पेकुलेशन ये जो हम करते हैं कि अपने मन से ये करना वो करना, शास्त्रों के आधार पर नहीं, गुरु साधु शास्त्र के आधार पर नहीं जाते हैं, तो हमें चलना चाहिए कि तृणावर्त हमारे हृदय में बोल रहे हैं, आओ भक्तों को मत पूछो कुछ, अपने स्वतंत्र भावना से कुछ करो, कितना अच्छा है, देखो कितना अच्छा लगेगा, भक्त लोग तुम्हें क्या सलाह देंगे, देखो ये भक्त है इसकी ये दुर्गुण है, वो भक्त है उसके तो क्या कहना, तीसरा भक्त है वो तो ऐसा है, मैं ही सब कुछ जानता हूं, इसलिए मैं जो अपने आप के निर्णय लूंगा वही सही है। गुरु कौन, साधु कौन, भक्त कौन, शास्त्र क्या। तो ये तृणावर्त आ रहे हैं, और तृणावर्त का दूसरा मुख, देखो मैं कितना जानता हूं, मैं कितना प्रवचन दे सकता हूं, मैं कितने श्लोक जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, दूसरे बिल्कुल नहीं जानते हैं। तृणावर्त का दूसरा मुख शुरू। तो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि तृणावर्त का मुख जब भी आए, बार बार आता है ना, आता है कि नहीं, बार बार आता है, तो भगवान से कहना चाहिए कि ये तृणावर्त को गला दबाकर आप इसकी हत्या कर दीजिए, ऐसे हत्या कर दीजिए कि कभी भी हमारे हृदय में ये दोबारा मुख दिखाने की हिम्मत ना करे। तो ऐसी कृपा याचना करनी चाहिए, भक्ति विनोद ठाकुर हमें सिखलाते हैं। तो इस लीला के बाद में माता यशोदा ने फिर से कृष्ण भगवान को अपने गोद में लिया और स्तनपान कराना शुरू किया। जब भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हुए तो हंसने लगे और फिर उनको नींद आई। जब नींद आई तो उन्होंने योनिंग, योनिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, जाम्बई, वो किया, जाम्बई तो मराठी है, जम्हाई। तो उन्होंने जम्हाई की, मुंह खोल दिया, तो माता यशोदा मुख में देख रही थी कृष्ण के, तो अचानक क्या देखा, सारा ब्रह्मांड मुंह के अंदर, सारा ब्रह्मांड है, उधर सारे नक्षत्र हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं और वृंदावन है। भगवान ने सारा विराट रूप का दर्शन कराया। कई लीलाएं ऐसी हैं कृष्ण लीला में जो कि भगवान ने दो बार तीन बार करी, जैसे कि दावानल को बुझाना कृष्ण भगवान ने दो बार किया वृंदावन में, अपने मुख में विराट रूप को दिखाना भगवान ने दो बार किया, ये पहली बार था। दूसरी बार भगवान ने कब विराट रूप दिखाया माता यशोदा को, मिट्टी खाने के बाद में, नहीं खाया कि नहीं खाया वो नहीं मालूम, लेकिन जब वो आरोप लगाया गया था उसके बाद में जब भगवान ने दिखलाया तो फिर वो दूसरी बार हुआ। लेकिन पहली बार इस बार तृणावर्त के वध के बाद में कृष्ण भगवान ने माता यशोदा को दिखाया, तो माता यशोदा फिर से घबरा गई कि ये भी क्या हो गया, अरे कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, क्यों मेरा बच्चा साधारण क्यों नहीं रहता है, क्यों ऐसी अद्भुत चीजें उसके साथ में होती रहती है, कभी भारी हो जाता है, कभी उसके मुख में ब्रह्मांड देखती हूँ, कभी वो ऊपर चला जाता है आकाश में आता है, कभी राक्षसी के ऊपर बैठ के खेलता है, ये सब क्या हो रहा है। तो ऐसे चिंता से माता यशोदा का प्रेम बढ़ते जाता बढ़ते जाता बढ़ते जाता, और ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य कृष्ण भगवान ने किए। और इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं कि ऐसे बाल लीलाएं जो है कर्ण रम्याणी मन ज्ञानी, कि कर्ण और हृदय को बहुत अच्छे लगते हैं, रम्य हैं, और ऐसे कथाओं का श्रवण करते करते कृष्ण भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके कोई प्रश्न
है कि जब कृष्ण ने पुतना का वध किया तो कृष्ण नहीं बल्कि उनके विष्णु रूप ने किया, और इसकी वजह से उनको ये मालूम ही नहीं, ऐसे वर्ताव कर रहे थे कि उनको कुछ मालूम ही नहीं हो, लेकिन हम प्रभुपाद जी कहते हैं अपने पुस्तकों में कि जैसे कि शक्ति और शक्तिमान, अगर उनके अंश है वो तो उनकी भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है, और जो उनकी अंश है वो शक्ति है, अगर शक्ति उनके कोई कार्य करती है तो शक्तिमान को न पता चले ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो शक्ति आती है वो शक्तिमान से ही आती है।
नहीं नहीं ऐसा ये तो ठीक है लेकिन ये भगवान की लीला शक्ति का खेल है, ये बहुत एक सूक्ष्म बात है। हा? ये ब्रज लीला की विशेषता है। ऐसी कौन सी बात है जो भगवान नहीं जानते, वो तो है ही, लेकिन फिर भी भगवान अपने आप को ऐसी लीला शक्ति के प्रभाव में डालते हैं लीला का रस का आस्वादन करने के लिए। अगर भगवान श्री कृष्ण जानते तो उनको भी आनंद कम हो जाता, जैसे अगर माता यशोदा जानते कि मेरा बेटा मेरा बच्चा भगवान है, कैसे रस कम हो जाता ना, तो फिर ऐश्वर्य की भावना आ जाती कि मेरा बच्चा मैं इसको मारूंगी कैसे, डांटूंगी कैसे, लाड़ प्यार कैसे करूंगी, तो वात्सल्य भाव बिल्कुल नष्ट हो जाता। तो उसी तरह से अगर कृष्ण भी जानते कि ये मेरी मां नहीं है तो फिर उनका भी रस कम हो जाता। तो कृष्ण भी अपने आप को अपने लीला शक्ति के प्रभाव में डाल देते हैं ताकि उनको भी माता यशोदा के लाड प्यार का रस वास्तव में मिले। कृष्ण भी उस प्यार के भूखे हैं। अगर कृष्ण जानते कि ये तो मेरी माता नहीं है तो वो रस नहीं होता। तो उसी प्रकार से कृष्ण भगवान ये बाल लीला का आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए अपने आप को भुलावे में डाल देते हैं। अपनी लीला शक्ति करती है काम, कृष्ण भगवान नहीं करते। लेकिन कृष्ण भगवान की स्थिति में रहना, हमारे माया शक्ति के प्रभाव में भूल जाना, इसमें बहुत अंतर है। कृष्ण भगवान हमेशा अपनी लीला शक्ति के कंट्रोल में ही रहते हैं, अपने हरेक शक्ति के कंट्रोल में रहते हैं। कंट्रोल में रहते हुए वो अपने आप को इस प्रकार के भुलावे में डालते हैं, लेकिन हम जब भुलावे में पड़ जाते हैं तो हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाता है। यह फर्क है हम में और भगवान में, सूक्ष्म बात है, ठीक है। इसकी और चर्चा हम तब करेंगे दामोदर लीला के समय, कार्तिक महीने में जब आएंगे उस समय इस लीला के बारे में और इसी तत्व, इसी पॉइंट के बारे में आगे विस्तार में चर्चा करेंगे, ठीक है।
भक्त, वैष्णव और ब्राह्मण में क्या फर्क है, थोड़ा व्याख्या करेंगे।
भक्त में और वैष्णव में कोई अंतर नहीं है, और ब्राह्मण में और वैष्णव में अंतर तब होगा जब ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं होता। जब ब्राह्मण केवल अपनी क्रियाएं करता है लेकिन वैष्णव नहीं होता, तो वैष्णव उससे ऊपर माना जाता है, वैष्णव उससे श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन ब्राह्मण के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच जाता है तो वैष्णव बन जाता है। जन्मराज आयते शूद्र संस्काराधि भवेद विजह, वेद पाठात भवेद विप्रो, ब्रह्म भ्रमातीति ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण। संस्कार के बिना सभी लोग जन्म लेते हैं शूद्र के रूप में। जब संस्कार हो जाते हैं इसे द्विज कहते हैं, वेद का पाठ करता है करते हैं तो उसे विप्र कहते हैं, और वेद का पाठ करने के बाद जब ब्रह्म को जान लेता है तो उसे ब्राह्मण कहते हैं, और ऐसा ब्राह्मण जब कृष्ण को जान लेता है तो उसे वैष्णव कहते हैं। ये अलग अलग स्तर होते हैं। जन्म से आदमी शूद्र होता है, क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं होते हैं। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से आदमी शूद्र रहता है। संस्काराधि भवे द्विज, संस्कारों से द्विज बन जाता है। द्विज मतलब द्विज, ज मतलब जन्म लेना, द्वि मतलब दूसरा जन्म, वो द्विज कहलाता है। वेद पाठात भवेद विप्रो, वेद का पाठ करने के बाद में वो बन जाता है विप्र। और जब विप्र ऐसे वेद के पाठ के पश्चात इत्यादि उसका साक्षात्कार हो जाता है, ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण, तब ब्राह्मण बन जाता है, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण। और जब ब्राह्मण समझ जाता है कि ब्रह्म वो परब्रह्म कृष्ण ही है, तब वो वैष्णव बन जाता है। ठीक है, वैष्णव और भक्त एक ही है। वैष्णव कौन है? कृष्ण का भक्त है। तो भक्त में और वैष्णव में दो ही, दो शब्द एक ही चीज के लिए।
हरे कृष्णा, जब भगवान का गुणगान होता है, कीर्तन होता है, जब हरि नाम संकीर्तन होता है, उधर तो भूत प्रेत पिशाचिया चुड़ैल या खेचरी इनका प्रभाव नहीं होता और उधर आते भी नहीं। जिधर भगवान स्वयं है तो उधर क्यों वो लोग आते हैं?
क्योंकि भगवान को लीला करनी है, भगवान को असुरों का वध करना है। अगर भगवान की उपस्थिति में नहीं आते तो कृष्ण भगवान असुरों का वध नहीं कर ही नहीं सकते। तो भगवान चाहते हैं कि ये आए, उनको उनका वध करें, और जो हमने सोमवार के दिन चर्चा की थी 8 कारण, उनका भी वो आस्वादन करना चाहते हैं। उन कारणों को पूरा करने के लिए भी भगवान इंदिला करते हैं, ठीक है। भगवान उनको खत्म कर देते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, पहुंचने देते।
बाबू जी, कभी कभी वैष्णव अति नम्र होने के कारण जब हम उन्हें ओबीसियंसेस वगैरह डालते हैं तो वो भी ओबीसियंसेस डालते हैं तो बहुत बुरा लगता है, तब क्या किया जाए? वो हमसे उच्च भक्त होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो और अति नम्र होने के कारण वो ऐसा करते हैं, तब क्या किया जाए? और जैसे कोई मायावादी या ऐसे होते हैं जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, तो उनसे चाहे वो अपराध भी करे भक्तों के प्रति, फिर भी सिचुएशन देख के कभी कभी हमें उनके पैर छूने पड़ते हैं, तो कभी कभी डर भी लगता है, तो तब क्या किया जाए?
किसी को प्रणाम करने में कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा बहुत कसरत भी हो जाता है, अच्छा शरीर स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो जाता है, तो नुकसान तो कभी नहीं है। न झुकने में खतरा है, जहां झुकना चाहिए वहां नहीं झुके तो ज्यादा नुकसान है, जहां नहीं झुकना चाहिए वहां झुके तो भी इतनी कोई बात नहीं है। तो अगर कोई सामने वाला भक्त जो करे तो आप क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रणाम करना छोड़ दें क्योंकि सामने वाला करेगा, कर लेना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर मायावादी कोई सन्यासी भी आए फिर भी हमें प्रणाम करना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो सन्यास आश्रम है उसको हम सम्मान दे रहे हैं, उस वस्त्र को भी हम सम्मान दे रहे हैं। इसलिए बताया, प्रभुपाद जी समझाते थे मायावादी सन्यासी भी कोई आए, हालांकि प्रभुपाद जी मायावादियों को इतना खंडन करते थे, इतनी निंदा करते थे उनकी, लेकिन फिर भी वो सामने आए तो झुकने में कोई बुराई नहीं है।
असुर और तृणाव जैसे जो राक्षस ये जो बोल देते हैं, लेकिन पहले जन्म में उन्होंने तो कुछ उसका अपमान किया ऋषि का, दुर्वास मुनि और उनको, लेकिन उनको डायरेक्ट भगवान का संग कैसा मिल जाता है और उसी से वो मुक्त कैसे हो जाते हैं, इतना ये करने के बाद भी उनको कैसा ये बाद में आशीर्वाद मिल जाता है कि तुम्हारा भगवान का संग हो जाएगा, क्योंकि पहले जन्म में तो कुछ ना कुछ अच्छा जो भगवान की सेवा करेंगे तो उसी को संग मिल जाएगा।
इसको ऋषि की कृपा कहते हैं। जब उनको प्रायश्चित करना, उनको पश्चाताप हुआ कि हमने बुरा काम किया है, कृपा याचना की ऋषियों से, तब उनको वरदान मिला। पहले जब उन्होंने बुरा काम किया और क्रोध में आकर ऋषियों ने उनको श्राप दिया तो उस समय ये नहीं कहा, जब उन्होंने कृपा याचना की तब ऋषियों ने कहा कि ठीक है, हम पूरी तरह से तो इस श्राप को मिटा नहीं सकते, लेकिन ये इतना जरूर कर सकते हैं कि इससे मुक्ति तुम्हें साक्षात कृष्ण के हाथों से ही होगी। कितनी बार ऐसे नलकुवर मणिग्रीव, ऐसे हरे प्राय हरेक लीला में हम ऐसा देखते हैं, अहल्या का भी ऐसे हुआ, तो लीलाओं में ऐसे है। फिर संत ऋषि मुनि करुणामयी होते हैं, जब देखते हैं कि सामने वाला शरण में आ गया है और वास्तव में कृपा याचना कर रहा है तो फिर थोड़ा दया की भावना आती है, ठीक है। तो ये है महान ऋषियों की कृपा, जिनकी कृपा से हमें भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसे भी उन्होंने ऐसे भी कोई कार्य किए होंगे जिनकी वजह से उनको ये सुअवसर प्राप्त हुआ, भगवान के चरण कमलों का स्पर्श। पूतना ने अपने चरण कमल, कृष्ण भगवान ने अपने चरण कमल पूतना के शरीर के ऊपर रखे, तृणावर्त के शरीर के ऊपर रखे, ये कोई साधारण बात नहीं है, खुद उनके शरीर के ऊपर चढ़े, कितने भाग्यशाली है तृणावर्त और शकटासुर भी, उनको चरण लगे उनको। और कोई बात, पद में हमारी बुरी आदतें कम क्यों नहीं होती, कम होती हैं, लेकिन बुरी आदतों का एहसास समय ज्यादा होने लगता है। पहले हम बुरी आदतें करते थे तो करते थे, इसमें कोई दो बार सोचने की बात भी नहीं होती थी, लेकिन अभी हर बार सोचना पड़ता है कि अरे ये है वो है, ये नहीं करना वो नहीं करना, ये विचार आ गया ये इच्छा आ गई, तो हमें ज्यादा इस बात का एहसास होता है। प्रभुपाद समझाते हैं, जैसे अब कोई किसी कहां पे झाड़ू लगाते हैं बहुत समय के बाद में, तो झाड़ू लगाते लगाते धूल उड़ जाती है, तो बाहर वाला कोई देखे सोचेगा कि झाड़ू मार रहा है या कमरा गंदा कर रहा है, लेकिन झाड़ू मार रहा है इसलिए तो धूल ऊपर उड़ रही है, धीरे धीरे से झाड़ू मारते मारते वो धूल चली जाएगी। उसी प्रकार से हम हरि नाम का जाप करते हैं तो हृदय को धो रहे हैं, तो हृदय को धोते धोते नीचे हृदय में, हृदय के गुफे में नीचे नीचे सब अटके हुए जो इच्छाएं हैं सब ऊपर ऊपर आ रही हैं। तो हमें इससे निराश नहीं होना चाहिए, झाड़ू मारते रहना चाहिए, अर्थात हरिनाम लेते रहना चाहिए। हरिनाम लेना छोड़ देंगे तो फिर से तृणावर्त शकटासुर पूतना सब ऊपर एक के बाद एक सब अपना मुख दिखाना आरंभ करेंगे, ठीक है।
गुरु कौन है, साधु कौन है और ऋषि कौन है?
गुरु कौन है, साधु कौन है, ऋषि कौन है? साधु वो होता है जिसके अंदर गुण होते हैं। तितिक्षभाकार ने कहा सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषण, यह साधु की परिभाषा जो कि माता देवहूति करती है श्रीमद् भागवत में। क्या है? तितिक्षवा सहनशील होना चाहिए, कारुणिक दयामय होना चाहिए, सुहृद सर्वदेहिनाम सर्व प्राणियों के प्रति वो शुभ चिंता अच्छी चिंता रखता है, मैत्री की भावना रखता है। अजात शत्रु किसी का शत्रु नहीं है, साधव सज्जन है, अच्छे गुण है उसके अंदर, साधु भूषण ऐसे गुणों से जो अलंकृत होता है उसे साधु कहते हैं। यहां वस्त्रों के रंग की बात नहीं है, गुणों की बात है। जो व्यक्ति ऐसे गुणों से अलंकृत होता है उसे साधु कहते हैं। हालांकि दैनिक साधारण भाषा में जो व्यक्ति ऐसे कपड़ों में जिन्हें संसार को त्याग दिया है या जो भगवान के भक्ति में या भगवान के कार्य में लगा हुआ है उसको साधु कहते हैं साधारण भाषा में, लेकिन गुण तत्व के हिसाब से देखा जाए तो माता देवहूति की परिभाषा वो सही है। और गुरु कौन होते हैं? गुरु वो होते हैं जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें भौतिक संसार से पार करा देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। और ऋषि कौन? ऋषि जो भी होते हैं जो आध्यात्मिक जीवन प्रयास आगे प्रगति करना चाहते हैं, तपस्या करते हैं। तो जो प्रामाणिक साधु होते हैं वो गुरु भी होते हैं और ऋषि भी होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के मुनि होते हैं। मुनि ही वैसे देखा जाए तो जो ज्ञानी प्रकार ज्ञान मार्ग के मुनि होते हैं वो ऐसे मुनि होते हैं जैसे हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पीएचडी होते हैं। पीएचडी करने के लिए उनको कोई नया कुछ ढूंढ निकालना पड़ता है, वही पुरानी बात बोलेंगे तो कोई उनको पीएचडी नहीं देगा, कुछ नई उनको बात सुझाकर कुछ करनी पड़ती। तो मुनि वो है जो अपनी नई बात खोज निकालता है। इस बात को देखने का कोई अलग दृष्टांत, कोई दृष्टि से देखना, कोई नई बात कहना, मतलब अपने मन से मन चाहे बातों को बताना, जो ऐसे ज्ञानी होते हैं उनको मुनि कहते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में जो मुनि होते जैसे नारद मुनि, वो उस प्रकार के मुनि नहीं है, वो वास्तव में ज्ञानी होते हैं जिनको अच्छा ज्ञान है, शास्त्रों का सिद्धांतों का ज्ञान है और जीवन का जीवन में भी इन सिद्धांतों का आचरण करते हैं। ठीक है।